आंगन में शाम उतरने लगी थी। पीपल के पेड़ की छाया अब लंबी होकर जमीन पर फैल चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन बेचैनी की गर्मी उससे ज्यादा महसूस हो रही थी। झूला धीमी आवाज में चरमराता हुआ आगे पीछे हो रहा था। रत्ना देवी उस पर बैठी थी। पीली साड़ी, सिर पर पल्लू, आंखें बार बार गली की तरफ उठ जाती। हर आहट पर लगता शायद रम्य आ गई हो। झूले की ठीक सामने लकड़ी की कुर्सी पर शकुंतला बैठी थी। रेढ़ सीधी, चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में साफ बेचैनी। घड़ी की टिक टिक आंगन में जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। स्कूल की छुट्टी को 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था और रम्या अब तक घर नहीं लौटी थी। शकुंतला ने छुंछलाकर कहा, माँ, आप देख रही हैं ना, ये लड़की कितनी मनमानी करने लगी है। रत्ना देवी ने धीरे से झूले को रोका। मनमानी नहीं शकु, देर हो गई है, बस यही फिकर है। फिकर? शकुंतला की आवाज में चुभन आ गई। ये फिकर नहीं है, आदत बनती जा रही है, न समय की परवाह न बताने की जरूरत। रत्ना देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी पल भीतर से शामली बाहर आई। उसकी नजर दोनों पर पड़ी, एक की आंखों में इंतजार, दूसरी की आवाज में गुस्सा। उसने माहौल को भांपते हुए कहा, दीदी, बाहर ठंडी हवा चल रही है, आप और मां अंदर चलिए, आंगन में नमी भी बढ़ रही है। शकुंतला ने एक पल को रत्ना देवी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। चलो मां, उसने थोड़ा सख्त लेकिन संभली हुई आवाज में कहा। रत्ना देवी ने सहारे से उठते हुए एक बार फिर गली की ओर नजर डाली, जैसे आंखें वहीं अटक गई हों। तीनों अंदर हॉल में पहुंची। श्यामली ने रत्ना देवी को बड़े सोफे पर बैठाया, कुशन ठीक से लगाया। खुद शकुंतला पास वाले सोफे पर बैठ गई। हॉल में हल्की सी पीली रोशनी थी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें, परिवार की, शादी की, बचपन की, सब जैसे खामोशी से सब देख रही थी। श्यामली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आप दोनों के लिए चाय ले आती हूं। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ गई। पीछे से शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कहने को बहुत कुछ है। किचन में दाखिल होते ही श्यामली ने गहरी सांस ली। चूल्हे पर केतली रखी, दूध निकाला, अदरक कूटी। उसके हाथ चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। मधु पास ही खड़ी सब देख रही थी। श्यामली के चेहरे पर जो चिंता थी वो उससे छुपी नहीं। मधु ने धीरे से पूछा, आप क्यों परेशान हो रही हैं छोटी मालकिन? श्यामली ने चाय की पत्ती डालते हुए हल्की सी मुस्कान की। परेशान ना हूं तो क्या करूं मधु? उसकी आवाज धीमी थी। दीदी बहुत परेशान है, डर लग रहा है, रम्या जब घर आएगी तो पता नहीं क्या होगा। मधु ने कंधे उचकाए, अरे वो बच्ची है, कभी कभी देर हो जाती है। श्यामली चुप हो गई, फिर बोली, यही तो बात है, वो बच्ची है। मधु ने हैरानी से उसे देखा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप बहुत बड़ी हों, आपसे सिर्फ 4 साल ही तो कम है, आप 20 की हैं और वो 16 की। श्यामली के हाथ एक पल को रुक गए। केतली से उठती भाप उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और धुंध थी। हां, वो धीरे से बोली, ये सच है, उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर उसने चूल्हे की आंच धीमी की। आवाज में एक ठहराव आ गया। लेकिन मेरे घर के हालातों ने, उसने निगाहें झुका ली, मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। मधु कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। जब मैं 16 की थी, श्यामली बोलती गई, तब मुझे पता था किस वक्त घर लौटना है, किससे क्या कहना है और किस बात को दिल में दबाकर रखना है। उसने केतली से चाय छानी। लेकिन रम्या, उसकी आवाज में नरमी आ गई, वो अभी भी बच्ची है, दिल से, सोच से। उसे नहीं पता कि दुनिया हर बार माफ नहीं करती। मधु ने धीरे से कहा, लेकिन दीदी भी तो मां है, उन्हें डर लगता होगा। डर? श्यामली ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
डर से ज्यादा उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती। ट्रे में चाय के कप रखे गए। श्यामली ने गहरी सांस ली। बस यही डर है मधु, रम्या से कोई गलती ना हो जाए और दीदी का गुस्सा उसे और दूर ना कर दे। मधु ने सिर हिलाया। भगवान सब ठीक करेंगे। श्यामली ने ट्रे उठाई। काश दीदी भी कभी ऐसा सोच पाती। वो हॉल की तरफ बढ़ी। उधर हॉल में शकुंतला की बेचैनी अब साफ दिख रही थी। वो बार बार मोबाइल देख रही थी। नेटवर्क था, कोई कॉल नहीं। रत्ना देवी ने धीमे से कहा, शकु गुस्सा मत कर, पहले उसे आने दे। मैं गुस्सा नहीं हूं मां, शकुंतला ने तुरंत कहा, मैं बस थक गई हूं हर रोज इसी इंतजार से। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा। इंतजार मां बाप का हिस्सा होता है। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखती रही। उसी वक्त श्यामली चाय लेकर आ गई। उसने कप रत्ना देवी के सामने रखा, फिर शकुंतला की तरफ बढ़ाई। दीदी चाय पी लीजिए, उसने बेहद सधे स्वर में कहा। शकुंतला ने कप लिया, एक घूंट भरा, लेकिन स्वाद पर ध्यान नहीं था। रम्या का फोन आया, श्यामली ने हिम्मत करके पूछा। नहीं, शकुंतला ने छोटा सा जवाब दिया। हॉल में फिर खामोशी छा गई। बाहर कहीं दूर से किसी ऑटो की आवाज आई। रत्ना देवी का सिर तुरंत उठा। श्यामली की नजर भी दरवाजे की तरफ चली गई। शकुंतला नहीं उठी, लेकिन उसकी उंगलियां कप के हैंडल को जरा ज्यादा कसकर पकड़ गईं। सब जानते थे, रम्या के घर लौटते ही ये खामोशी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने वाली। और श्यामली के मन में बस एक ही दुआ थी कि जब वो बच्ची दरवाजा खोले तो सामने सिर्फ सवाल ना हो, थोड़ा सा समझ भी हो। हॉल में पसरी खामोशी अब और गहरी हो गई थी। घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीरे चल रही हों। शकुंतला ने चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। अब उससे पिया नहीं जा रहा था।